ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयात्मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण ग्रन्था श्रीमद्भागवतम् स्कंद 5 अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 20। कृपया मूल शब्द दोहराइए। असदृशः यः प्रतिभाति मायया शिवः इव मधु आसव ताम्रलोचनः न नागवध्व अहरणे ईशरे हिया यत्पादयो स्पर्शना धर्षिता इन्द्रियः असदृशाय असदृशो या प्रतिभाति मायया असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षिबेव मध्वा वसताम्रलोचनः न नाग्वध्वो हरेण ईशरेहिया यत्पादयो स्पर्शनधर्षि ते इन्द्रियः असदृशो योः प्रतिभाति मायया क्षिभवः मद्वा वसताम्रलोचनः न नाग्वधो हरेण ईशरेहिया यत्पादयो स्पर्शनधृषेतेन्द्रियः प्रतिभाति मायया శిబేవ మద్వావసతామ్రలోచన నాగవద్వోర్హరిణైశ్వరేయా యత్పాదయః స్పర్శమధిషేంద్రియః అసదృశయా ప్రతిభాతి భాయయా శిబేవ మద్వావసతామ్రలోచనః యత్పాదయో స్పర్శంత శక్తింద్రియః.
మాతాజీ,
असदृश
कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्ति के हेतु
यह जो प्रतिभाति प्रतीत होता है मायया माया के वश में शिवः क्रुद्ध इव సదృశః మధు శహత్ ఆసవా తథా సురా ద్వారా తామ్రలోచన తాంబే కే సమాన రక్త నేత్ర వాలా నహి నాగవద్వః నాగో కి శ్రియా అహరణే పూజన్ ईशरे करने में अशक्त हिया लाजवश यत्पादयो जिसके चरण कमल के स्पर्शन स्पर्श से धर्षिता उत्तेजित इंद्रियः जिसकी इंद्रिया. अनुवाद और तात्पर्य. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Dwara Srila Prabhupada Ki Jai. Kutsit Drishti Wale Vyaktiyo Ke Liye Shri Bhagwan Ke Netra Sura Pikar Unmat Purusho Jaise Hai. Aise Aviveki Purush Bhagwan Par Rusht Hote Hai Aur Apne Rosh Vas Unhe Shri Bhagwan Atyant Rusht Evam Bhayavane Lagte Hai. किंतु यह माया है. जब भगवान के चरण कमल के स्पर्श से नागवधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी आराधना नहीं कर पाई, जबकि श्री भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे धीर बने रहते हैं. अतः ऐसा कौन होगा जो श्री भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं, उत्तेजना का कारण रहते हुए भी जो उत्तेजित नहीं होता वह धीर कहलाता है. श्री भगवान सदैव दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं होते. अतः यदि कोई धीर बनना चाहता है तो उसे श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए. भगवद गीता में दूसरा अध्याय 13वें श्लोक में बताया जाता है, श्री कृष्ण का कथन है, धीरस्तत्र न मुह्यति. ऐसा पुरुष जो सभी परिस्थितियों में धीर बना रहता है कभी की कर्तव्य मूड नहीं होता. प्रहलाद महाराज धीर के ज्वलंत उदाहरण हैं. जब नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपने विकराल रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए, वे शांत और स्थिर बने रहे, जबकि अन्य सभी यहां तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान के रूप से भयभीत थे. ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभारी हूं कि मुझे आज भगवत चर्चा के लिए एक संधि, सुवर्ण संधि मुझे दिला दी, इसलिए आप सभी का मैं आभारी हूं। यहां पर शिवजी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपने कार्यों से ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो हमेशा धोखा खाता है, जो हमेशा भ्रमित रहता है, उन व्यक्तियों के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। महादेव कथन करते हुए बहुत ही भगवान की सुंदर प्रार्थना करते हुए बतला रहे हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए, वास्तव में भक्ति का प्रयोजन क्या है। भक्ति का प्रयोजन है भगवान की संतुष्टि, लेकिन आजकल सभी भक्ति तो करते हैं लेकिन स्व संतुष्टि के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए। कोई मंदिर जाते हैं श्री श्री राधा राजबिहारी भगवान की, श्री गौरनिताय की जय, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, तो अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आजकल भक्ति का अवलंबन किया जाता है, लेकिन वास्तव में भक्ति का प्रयोजन भगवान को संतुष्ट करना है। तो शिवजी यहां पर अपने कथन से बतलाते हैं, यहां तक के बड़े बड़े आचार्य जो हुए हैं उन्होंने भी अपने कथन में बतलाते हैं। जैसे कुलशेखर महाराज बताते हैं, नाहम वंदे पद कमलयोर द्वंद्व हेतो कुंभी पाकम गुरुम अपि हरे नारकम नापु ने। तो यहां पर कुलशेखर महाराज बतलाते हैं कि मुझे भवजाल से छूटने की इच्छा नहीं है। कोई कोई चाहता है कि इस संसार से छूटूं, कोई कहते हैं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो, कोई कहते हैं मुझे धन प्राप्त हो, सुंदर स्त्री प्राप्त हो, तो इन सभी इच्छाओं को लेकर भगवान के पास जाना या भगवान की भक्ति को प्रारंभ करना। तो यहां पर वो कहते हैं कि मुझे भवजाल से छूटने की इच्छा नहीं है, यहां तक कि कुंभीपाक जो नरक की यातना है मैं उसे भी डरता नहीं हूं। मेरी एकमात्र कामना यही है कि आप में मेरा मन हमेशा लगा रहे। ना हम वंदे पद कमलयोर, मैं आपके चरणों का ध्यान करना चाहता हूं, आपके चरणों पर मेरी मति लगाना चाहता हूं। तो कुलशेखर महाराज जी के पास ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं था, ऐसा नहीं, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होते हुए वह भगवान पर पूर्ण आश्रित हैं और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते थे। तो जीव को चाहिए कि वह भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें और उसी को भक्ति बताया जाती है। भक्ति कोई अन्य नहीं है। जैसे ही हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कार्य करते हैं, उसी का नाम या उसी को भक्ति कहते हैं। यत करोषि यदश्नासी यज्ञ होसी तथासी यत यत तपसेसी कौनते तत्कृष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। भगवान गीता में बताते हैं कि जो कुछ भी करते हो वो मेरी संतुष्टि के लिए करोगे या मुझे समर्पित करोगे तो वह सर्वोत्तम भक्ति योग है। तो यहां भगवान की भक्ति करनी है तो कौन सी भाव में करनी है, इसके लिए शिवजी बताते हैं कि हमें जैसे हम जिस भाव से भगवान को देखेंगे उसी भाव से हमें हमारी भगवान के प्रति संबंध स्थापित होता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जब युद्ध चल रहा, जब चानूर और मुष्टिक के बीच में, चानूर और मुष्टिक के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को उस मल्ल युद्ध में देख रहे थे, तो सभी लोग अलग अलग दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। भगवान का देखने का, कोई कहते थे कि नहीं भगवान इतने साधारण कोमल बालक है, उनको यहां बड़े बड़े असुर कैसे मारेंगे और उनको हाथ लगाएंगे, उनको उठाएंगे, पटकेंगे, अनेक अनेक प्रकार से विचार करने लगे थे। लेकिन जिन्हें पता था कि उन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा है तो वो तो निश्चिंत थे। ग्वाल बाल वहां बैठे हुए थे, वो सोचते थे कि भगवान तो इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है, तृणावत को मारा है, पूतना को मारा है, तो इसे मारने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो सहज रूप से मारेंगे। तो वो बहुत ही आनंद में बैठे हुए थे। लेकिन जिन्हें पता नहीं था वो तो सब डरे हुए थे कि ये तो अत्याचार हो रहा है, ये तो भगवान छोटे से बालक है और इतने बड़े बड़े पुरुषों के साथ, इतने बड़े बड़े असुरों के साथ युद्ध करा रहे हैं, ये तो कोई न्याय नहीं है, ये सोच सोचकर सब लोग। लेकिन भगवान को देखने का जो वास्तव में भगवान, तो यहां पर शिवजी बतलाते हैं कि कोई अगर सुरापान करके ताम्रलोचना, लाल उनकी आंखें हुई हैं और ऐसे आंखों से, उस भाव से, उस स्थिति में अगर कोई भगवान के तरफ देखते हैं तो भगवान भी उन्हें वैसे प्रदर्शित, वैसे प्रतीत होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्य हम, भजन तो नहीं किया लेकिन जो भाव को धारण किया है उस भाव में अगर रहते हुए भगवान को देखेंगे तो भगवान उस प्रकार से प्रतीत होते हैं, वैसे ही उनको दिखाई देते हैं। उसके उदाहरण में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि जब प्रहलाद का रक्षण करने के लिए, प्रहलाद महाराज जी का रक्षण करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए थे तो इतना भयानक रूप था, उस रूप को देखकर सब लोग भयभीत हुए, यहां तक कि ब्रह्मा जी और लक्ष्मी सभी लोग भयभीत हो गए। लेकिन वहां पर छोटे से बालक प्रहलाद जी जो थे वो बिल्कुल निश्चिंत थे और भगवान का वो रूप इतना मोहक लग रहा था, उस भगवान के रूप का वर्णन करते हुए बहुत ही मोहक और बहुत सुंदर लग रहा था, जबकि भगवान का वो रूप देखकर सब लोग भयभीत हुए थे। सभी देवी देवता बहुत दूर खड़े होकर उस भगवान का दर्शन कर रहे थे, कोई पास नहीं जा रहा था। तो ये किस कारण से होता है, तो बताते हैं भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब हम हमारे आंखों में प्रेम रूपी अंजन भर लेते हैं तभी जाकर उस भगवान की वास्तविक स्वरूप का हम ध्यान करते, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, हम भगवान के वास्तविक उसी रूप का हम ध्यान करते रहेंगे और वही रूप का आनंद हमको आस्वादन करने का वहां पर हमें प्रचीति प्राप्त होती है। चाहे भगवान किसी अन्य रूप में आ जाए, वराह रूप में आ जाए, लेकिन भगवान की वही सुंदरता का अनुभव हम करेंगे जब हम प्रेम रूपी अंजन हमारे आंखों में भरेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, भगवान के प्रति प्रेम जब तक नहीं होता है और यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था तब तक नहीं प्राप्त होती है जब तक हम देहात्म बुद्धि से परे नहीं होते हैं। हम किसी शरीर और चमड़े की वस्तु को देखकर इतने आनंदित होते हैं, उल्लासित होते हैं, लेकिन जब तक यह नष्ट नहीं होता है, देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होती है, तब तक भगवान के वास्तविक स्वरूप स्थिति को, वास्तविक लीलाओं में, लीला को समझने में हम असमर्थ रहते हैं। नाम रूप लीला गुण, ये जो भगवान के विशेष जिससे हम भक्ति का आस्वादन करते हैं, इन गुणों को, इन तत्वों को समझना कठिन हो जाता है। तस्याः सुलभ पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हूं जो देह को प्राप्त तो हो चुके हैं लेकिन वैराग्य को धारण करते हैं। देह को प्राप्त, जैसे संत महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ऋषि होते हैं, वो उदासीन रहते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं और वैराग्य को धारण करने के बाद में भगवान से आसक्ति या भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे ही इस भौतिक जगत से अनासक्ति होती है वैसे ही भगवान से आसक्ति प्रारंभ होती है, लेकिन जब तक जीव इस भौतिक जगत में आसक्त है तब तक वह भगवान की प्रेमा भक्ति में या भगवान में आसक्त नहीं हो सकता है। तो अनासक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या भगवान में वह रुचि, भगवान में वह प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहां पर शिवजी ने स्पष्ट कर दिया है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुम आराध्यते पराम। भगवान अगर भक्ति ही करनी है किसी को तो विष्णु जो परम आराधना के योग्य है उनकी आराधना करो, विष्णु की आराधना करो, श्री कृष्ण की आराधना करो और उन्हीं भगवान की आराधना करने के उपरांत ही हम इस भौतिक जगत से, देहात्म बुद्धि से और इस भव जाल से सबसे हम मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब तक यहां से निकलते नहीं है तब तक हम लोग भगवान की प्रेमा भक्ति का आस्वादन या प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक ही समय पर दोनों वस्तु प्राप्त करने के अगर कोई प्रयास करता है तो वो प्रयास व्यर्थ है। जैसे बताया जाता है कि एक बंदर होता है और वो बंदर क्या करता है, एक छोटा सा जिसमें मराठी में चंचुपा जो प्रयोगशाला में होता है उसका ऊपर का जो मुंह होता है वो छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है। तो ऐसे पात्र में कई सारे पदार्थ रखे हुए हैं तो बंदर आता है उस बॉटल में, उस पात्र में हाथ डालता है तो हाथ तो आसान से उसमें जाता है, जैसे ही उस पदार्थों को उठाने का सोचता है तो हाथ बाहर निकलता नहीं है, फिर कहता है कि हाथ क्यों अटका, फिर छोड़ देता है, फिर निकालता है बाहर तो हाथ निकल आता है, फिर कोशिश करता है उसको उठाने की फिर अटक जाता है। बोले ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में उसे पता चलता है कि जब मैं इन वस्तुओं को लेता हूं, ग्रहण करता हूं तो मेरा हाथ अटक जाता है, जैसे ही छोड़ता हूं तो हाथ बाहर निकल आता है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए हम अगर उस सब चीजों का आनंद भोगना चाहते, उसमें आसक्त रहना चाहते हैं तो हम इस भौतिक जगत में ही फंसेंगे। लेकिन जैसे तैसे यहां से निकलने का, वैराग्य को धारण करने का, यहां से निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि न तेषु रमते बुधा। ये जो जगत है ये बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है। यहां हमारा, यहां हम लोग आए हैं, मनुष्य देह को प्राप्त किए हैं और बहुत सौभाग्य से हमें भगवान की कथाएं प्राप्त होती हैं, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद। तो इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने, ये बहुत दिव्य है, इसे भगवान का हम अनुभव कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जब हम लोग गंभीरता से इसे जान लेंगे और जब हम इसे समझ लेंगे, तभी जाकर भगवान से हमारा वास्तविक संबंध स्थापित होगा। इसे हमें बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत पुण्य करने के बाद में, वास्तव में पुण्य की गणना ऐसे बताया जाता है कि पूर्व काल में बहुत पुण्य जमा होता है, तभी जाकर यहां इस मंदिर में प्रवेश होता है, भगवान का एक बार दर्शन होता है, या भक्तों का, शुद्ध भक्त का दर्शन होता है, बहुत पुण्य एकत्रित करने के बाद। क्योंकि ये सब वस्तुएं दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, और ये दिव्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उतना पुण्य संचित होने के बाद ही हमें उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमने जैसे बताया जाता है, ध्रुव महाराज के विषय में बताया गया कि ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष के आयु में ही भगवान की प्राप्ति कर ली, और वो भी 6 महीने में। तो ऐसे कैसे संभव हुआ? तो सब प्रश्न करने लगे, क्यों ऐसे? नारद मुनि भी उनको भी प्रश्न उठा कि ऐसे कैसे संभव हुआ भगवान। तो उन्होंने कहा कि आप जहां से गुजरते हुए आ रहे थे, आपने देखा कई पर्वत पर पर्वत दिखे थे, तो वहां पर हड्डियों के पर्वत हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि कई जन्म ध्रुव महाराज के हुए थे भगवान का भजन करते करते, और कई जन्म के उपरांत उस शरीर के हड्डियों के पर्वत बन चुके थे, तब जाकर भगवान ने 6 महीने में उस ध्रुव महाराज को दर्शन दिया। तो ध्रुव महाराज को दर्शन, तो कोई सोचता है कि 6 महीने में भगवान ने उस ध्रुव ने इतनी तपस्या की और 6 महीने में ही प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है। कई जन्मों के बाद में भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें बहुत गंभीरता से इन सब वस्तुओं को, यह जो दिव्य साधना है, इस साधना को हमें बहुत ही गंभीरता से लेंगे तो हमें भगवान का अनुभव, भगवान की प्राप्ति हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक श्लोक में स्वयं भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव आता है तो भौतिक चीजों में लग जाता है, माया में, और त्रिगुणातीत रहता है। कभी वह सत्व गुण में रहता है, कभी रजोगुण में, तो कभी तमोगुण में दिखाई देता है। त्रिगुणातीत माया में वह हमेशा रहता है। तो उसके लिए भगवान स्वयं बताते हैं कि ऐसे जीवों को मैं क्या करता हूं। कृष्ण कहे अमाय भजे मागे विषय सुख। बोले भगवान के पास में लोग आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं? तो बोले भजन भी करते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, भगवान के विषय में सुनते भी हैं, लेकिन सब कुछ करते करते क्या करते हैं? मांगे विषय सुख। बोले विषयों का सुख मांगते हैं। तो उन्होंने कहा अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। अमृत को छोड़कर विष मांगते हैं, ये कितना मूर्खता है, यही बड़ा मूर्ख, सबसे मूर्ख है कि यहां पर आने के बाद सब कुछ मिल रहा है और ये सब कुछ मिलने के उपरांत क्या कर रहे हैं? तो बोले मांगी विषय सुख। तो वो बड़ा मूर्ख है, लेकिन बोले वो मूर्ख है तो क्या हुआ, आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं, से ही अज्ञ, इसीलिए मुझे मालूम है उसे क्या देना चाहिए। विषय के नहीं दिबो, मैं उसको विषय नहीं दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई वो। बोले स्वचरणामृत देकर उसको विषय ही भुला देता हूं। बोले आया तो था वो काज का टुकड़ा ढूंढने के लिए ध्रुव, और इतनी तपस्या किया किसके लिए किया? कांच के टुकड़े के लिए। कोई सोच सकता है? इतनी भयंकर तपस्या की थी उस ध्रुव ने, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य क्या था? तो कांच का टुकड़ा प्राप्त करना। तो बोले मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, वो कांच के टुकड़े के लिए आया था, लेकिन मैं उसे स्वचरणामृत दिया, उसको मैं उसने जब मेरे चरणों को देखा, मेरे दिव्य रूप को देखा, तो विषय भुलाई वो, उसे विषय ही भूल गया वो, और रोने लगा। उसने कहा कि मैं भगवान आया तो था, लेकिन आपका दर्शन किया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना वो रोया, अपने आप पर कोस रहा था कि मैं कितना मूर्ख हूं, और इस प्रकार से वो अपने आप को कोसते हुए, फिर भी भगवान ने उसे कहा कि नहीं, आए तो विषय के लिए थे, मैं विषय तो नहीं दूंगा, लेकिन उसमें आप रहोगे, उस ध्रुव लोक में रहकर भी मेरा भजन करोगे। तो भगवान ने उसे दिव्य स्थिति में स्थित किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के पास कोई जीव आ जाता है, चाहे अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाता है, तो एक ना एक दिन भगवान उसके सब अनर्थों को दूर करते हुए, यह भक्ति का गुण है, या भक्ति में उतनी शक्ति है, भक्ति का स्वभाव है कि वो क्या कर देता है कि जो भी अनर्थ है, जो हमारे में विषय भाव विषय वासना जागृत होती है, तो यहां भक्ति में लगने के कारण, भक्ति में आने के कारण, भक्ति में ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं कि हमेशा भक्तों का संग करना है, भागवतम का श्रवण करना है, भगवान का दर्शन, भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करना है। ये भक्ति में रहते हुए जब व्यक्ति इन कार्यों को करना प्रारंभ करता है, तो उसके जो विषय वासना है वो सब नष्ट हो जाती है, और वो ऐसे स्थिति में, वास्तव में भक्तों की जो स्थिति है, भगवान गीता में बताते कि भक्त कौन है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्पर, वो भक्त हैं। बाहरी ऊपरी दृष्टि से दिखाई देते हैं कि नहीं वह ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वह ऐसा रहता है, वैसा रहता है, लेकिन भक्त कौन है? तुकाराम महाराज कहते हैं कि भक्त तो चीज आना जो देही उदास, देह में जो उदास रहते हैं वो भक्त हैं। देही उदास, या फिर ऐसे बताते हैं कि हम लोग जो ऊपरी भाव को जो भूल जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, लेकिन भगवान सबके अंतरात्मा में, पंडिता समदर्शिना, ये सब तत्वों को थोड़ा हम दूर रहते हैं, सब में भगवान है। भगवान कहते हैं कि कोई सुंदर गाता है तो उस गाने के पीछे जो मधुर आवाज है वो भी मैं हूं, तो हम उस आवाज को ही देखते हैं, उसकी वही सुंदरता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे भगवान है। वह सुंदरता भगवान के कारण है, वह सुंदर आवाज भगवान के कारण है। इस तत्व को जब हम भूल जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं, हम अपने आप को भूलते हैं, संसार को भूलते, इसी संसार में भटकते रहते हैं। तो भगवान केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो यहां भाव की विशेषता को बताया जाता है कि किस भाव में हमें भगवान का दर्शन, किस भाव में हमें भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना है। तो अलग अलग प्रकार से वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि कोई वात्सल्य भाव में, कोई साख्य भाव में, कोई दास्य भाव में, तो कोई माधुर्य भाव में भगवान के साथ संबंध स्थापित करता था। तो हर एक को चाहिए कि भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करें, और उस संबंध के अनुसार भगवान से व्यवहार करें, भगवान के साथ आदान प्रदान करें। साख्य भाव में अगर हम भगवान के साथ हैं तो भगवान को ही मित्र रूप, मित्रवत, उनके साथ हम चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ में हम हमारे अंदर में जो भी बातें चल रही है उनके साथ हम मिल बांट सकते हैं। भगवान के साथ हमें भावपूर्ण भक्ति, क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। अगर भाव नहीं है सीधा तो हम उस भगवान के वास्तविक तत्व को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे चैतन्य महाप्रभु आज्ञा देते हैं, रघुनाथ गोस्वामी को भीतरे वैराग्य धरी, बोले आप घर तो जाओ और अपने पारिवारिक जो इच्छाएं हैं माता पिता की उनके साथ में रहो। वो कहते थे कि नहीं, माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं। बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलना आसक्त नहीं रहना उसमें। वो तो आसक्त नहीं थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती ही उनका ब्याह कराया। तो ब्याह कराने के बाद भी उनको बताया गया था कि उसमें भगवान में जिनका वास्तव में मन लगा हुआ है वो किसी प्रकार से भी विचलित नहीं होते। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का मन भगवान में इतना लगा हुआ था कि सबसे बहुत शक्तिशाली बेड़ी जिसे कहते हैं ब्याह शादी, ऐसा कहते कि कोई, कभी कभी बाहर की दुनिया में कहते हैं कि कई लड़के लोग घूमते हैं रात बारह बारह एक एक और कुछ भी उठपटांग सा कार्य करने में लगते हैं, तो कहते हैं इसका पहला ब्याह करा दो, शादी करा दो तो ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो बोले वो शांत जब पत्नी आएगी और उसके साथ में रहने लगेगा, संसार करने लगेगा, तो वो फिर भूल जाएगा। ये देखते आए हैं, आज की बात नहीं, कई वर्षों से, कई जन्मों से हम देखते आए हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को इतनी सुंदर रूपवती पत्नी प्राप्त होने के बाद भी, भारिया प्राप्त होने के बाद भी, उन्होंने उनके मुख की तरफ देखा तक नहीं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए हां कृष्ण करते हुए घर छोड़कर निकल गए। तो जिनमें वास्तव में जिनकी मति भगवान में लगी हुई है वो किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होते, वो धीर रहते हैं। भगवान गीता में बताते धीरस्तत्र न मोहयति, वो मोहित नहीं होते हैं। लेकिन जिनकी मति भगवान में वास्तविक नहीं लगी हुई है, जो अपरिपक्व है, वो हमेशा डामाडोल रहते हैं, आगे पीछे कभी विचलित रहते हैं। लेकिन जिनमें स्थिर बुद्धि हुई है वह हमेशा भगवान का चिंतन और भगवान के चिंतन के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, जैसे तैसे वो वहां से जाएंगे और भगवान में मन लगाने का वो प्रयास करेगा। बस मुझे ये पता है कि मैं यहां पर आया हूं और ये मेरा आखिर का जन्म है, मैं भगवान की भक्ति करूंगा और भगवान के धाम चले जाऊंगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं जरूर इस मूल्य को चुकाऊंगा, लेकिन ये मेरा आखिरी जन्म है। इसको जागृत रखना, इस भाव को जागृत रखना, तो यह भाव ग्राही, यह जो भाव है भगवान के साथ हमें संबंध स्थापित करना है, भगवान में लोलुपता, भगवान के भक्ति के लिए लोलुपता बढ़ाना, तो ये भाव पर बहुत डिपेंड करता है, कोई बाहरी दुनिया बाहर की नजर से। इसलिए कहते हैं कि जो वृंदावन में बाबा जी लोग आदि जो रहते थे वो बिल्कुल अनासक्त, देह के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती थी, लेकिन एक विषय हमेशा रहता था कि मैं भगवान को कभी भी ना भूलूं। हमें हमारे शरीर को सजाना है, उसका उद्देश्य भी वो होना चाहिए कि हम भगवान के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए हम अपने शरीर को सजा रहे हैं। एक साधु महात्मा थे, बोले वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनके पैर को बहुत बड़ी जख्म हुई थी, और जैसे वो चलते थे तो उनके वो काफी पुरानी भी हुई थी, तो पैर में कई सारे कीड़े भी गिरे थे, तो कीड़ों को उठाते थे उसमें फिर डालते थे। तो किसी ने देखा, बोले बाबा उसकी आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ये करते हैं? तो बोले देखो मैं शरीर नहीं हूं, तो ये तो शरीर उनके लिए बना हुआ है, उनका भोजन है, तो उनको मैं खिलाता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये कीड़े तो आत्मा को नहीं खा सकते हैं, ये तो शरीर को खा रहे हैं। बोले उसकी मरम पट्टी क्यों नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी बात पूछी। तो बोले अगर मलम पट्टी करता हूं ठीक हो जाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं भगवान को भूल जाऊं। जब भी मैं भूलता हूं तो एक पत्थर उठाता हूं उसको और मारता हूं तो कृष्ण की याद आती है, और मैं कृष्ण को याद करता हूं दुख में, भगवान मुझे बहुत मैं भगवान को बहुत याद करता हूं। तो ऐसे ऐसे महात्मा हो गए, उनसे यही शिक्षा है कि हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा भगवान को। जिस अवस्था में हम हैं, कामासक्त हो जाते हैं, तुरंत भगवान को याद करना चाहिए। मन इतना दुराचारी है, मन इतना पापी है कि वो हमेशा, मैं हमेशा एक उदाहरण देते रहता हूं कि एक छोटे बालक के जैसा मन है। दुष्ट मन तुम्ही कैसे रे वैष्णव, कैसा मन है? तो एक छोटा सा बालक जैसे, उसकी मां उसको मंदिर में लेकर आती है और मंदिर में हाथ जोड़कर बताती है कि बेटा देखो राजबिहारी की तरफ। तो छोटा सा बालक होता है, नादान होता है, तो देखता है, बोले प्रार्थना करो। जैसे ही वो आंख बंद करके उस बालक को बताती है कि तुम भी प्रार्थना करो, तो मां जैसे आंख बंद कर लेती हैं, तो बच्चा फिर कहीं देखते हैं कि गंदी नाली में खेल रहा है, फिर उसे उठा लाती है, फिर उसको साफ करती है, फिर उसको साफ करके फिर भगवान के सामने लेके आती है। तो ऐसे कई बार करती है। तो हमारा मन भी वैसे ही दुष्ट है, हम मंदिर में रहते हैं लेकिन कई गंदगी में खेलते हुए दिखाई देता, फिर उसे उठा कर लाना है। मंदिर में हम तो हैं लेकिन किसी के पीछे चला जाता है मन। उस मन को हमें बार बार, उस मन को भगवान के सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, उस मन को लगाना है, जबरदस्ती लगाना है। प्रेम से नहीं हो सकता है, अगर प्रेम करना चाहे तो मन प्रेम के लायक नहीं है। इसीलिए तो बताते हैं ना कि सवेरे जूते से और शाम को झाड़ू से मारना चाहिए मन को, क्योंकि मन इतना है नहीं, जितना उसे समझाओ उतना ही मचलता है। जितना हम उसे समझाने के लिए जाएंगे उतना वो भागेगा। जैसा छोटा बालक होता है, उसको बताया जाए कि वो जो कोना है उधर नहीं जाना, वो बॉटल है, बॉटल को नहीं छूना, तो वो छुएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा। एडवांस, आजकल के बच्चे तो एडवांस हो गए हैं। तो भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, और इस भाव को बनाए रखने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो उस भाव की, भाव का जो स्टैंडर्ड है, भाव का जो स्वभाव है, वो कैसा होना चाहिए, यहां पर शिव जी बतलाते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति अगर भगवान को सुरापान करके कोई आ जाए, जैसे कोई आ जाता है तो सुरापान करके भगवान की तरफ देखे, तो कहेंगे अरे भगवान देखो कितने कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कोई भगवान है? वास्तव में भगवान श्याम सुंदर, इतने सुंदर हमारे दास बिहारी, इतने सुंदर हैं, लेकिन कोई पी कर आ जाए तो उसको, उस भगवान की सुंदरता को नहीं देख पाएगा, उसे भी भगवान पिए हुए लगते हैं। बोले ऐसा थोड़ी है, जो भाव मन में लेकर आते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, भक्त भी कभी कभी देखते हैं क्या आज भगवान कुछ अप्रसन्न लग रहे हैं, वास्तव में वो अप्रसन्न रहता है। ले भगवान तो हमेशा ही प्रसन्न नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त बोलते हैं हाँ आज कुछ भगवान थोड़े से नर्वस लग रहे हैं। भगवान नर्वस कभी होते नहीं है। मैंने तो कभी इतने साल में पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो भगवान के उस भाव को समझने के लिए, हमें उस भाव को बनाने के लिए, भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, बड़ा आवश्यक है। तो शिवजी उस भाव को यहां पर प्रकट कर रहे हैं, जो मूर्ख लोग हैं उस भाव को धारण करके भगवान को उस प्रकार से देखते हैं। लेकिन भक्त अगर उसी के विपरीत, भक्त अगर प्रेम रूपी अंजन डालकर, आंखों में डालकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान श्याम सुंदर रूप में दिखाई देते हैं और वो हमेशा हम पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि नहीं, केवल मुझ पे ही वर्षा कर रहे, एक संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान किसी पर कृपा कर रहे हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझ पर जरूर भगवान कृपा कर रहे हैं। ये भाव होना चाहिए, यही भाव। और मुझ पे कर रहे हैं, जब हम पर कर रहे हैं ये पता चलेगा, हम शुद्ध होते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भाव आ जाएगा कि हमें लगने लगेगा कि भगवान अब मुझे किया, मेरे पर कृपा किया, मत नहीं किया तो चलेगा, आप सब पर कृपा करो, ऐसा भाव आ जाता है। मैं भूखा, कभी कभी हम जाते थे, जब मैं मंदिर में पहली बार गया, पुनः मंदिर जाता था मैं, तो प्रसाद के लिए जाते थे, पहले प्रसाद हमको मिले, तो प्रसाद के लिए जाते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रसाद खा खाकर ऐसी बुद्धि बन जाती है कि पहले अभी सबको खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे, अब मिला नहीं मिला तो भी चल जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मन में आ जाती है, भक्ति का ये स्वभाव है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि भगवान के साथ हमें संबंध स्थापित करना है, और यह संबंध स्थापित हो सकता है केवल हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अगर हम कीर्तन भजन जप अगर प्रेम से करेंगे तो निश्चित रूप से वह स्वाद, वह आनंद हमें प्राप्त होगा, जो हम रोज उसको पढ़ते हैं, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वादन हमें उसी नाम मंत्र से होगा, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही है, हरेर नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव न अस्तेव गतिरन्यथा। तो हमें अगर गति को बढ़ाना है, हमें उस भाव को प्राप्त करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, और अधिक दृढ़ता से, कोई कर रहा है और शुद्धता से और गंभीरता से और भाव से बढ़ाते हुए जाना है उसमें। हरे कृष्ण, किसी का कोई इस पर टिप्पणी है तो? यस ब्रो, हाँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ध्रुव महाराज के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। मैं सुना था कि ध्रुव महाराज पिछले जन्मों से तपस्या करते हुए आ रहे थे, तो नेक्स्ट लाइफ में उनका सिक्स मंथ जो बोला जाता है, सिक्स मंथ उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, उतना ही उनका बाकी था। तो मिलने के बाद उन्होंने जो भगवान से डिजायर था उनका, ब्रह्मा से भी उच्च पद पाने का, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि पिछले जन्म में उनका क्या डिजायर था?
ये मेरे अभी सुनने में नहीं आया है, काश मुझे
ऐसा कोई वर्णन है क्या कि पिछले जन्म में उनका कुछ सेम डिजायर था कि अब जो नेक्स्ट जो डिजायर जो नेक्स्ट लाइफ में था वही डिजायर पिछले जन्म में भी था क्या?
ऐसा कुछ मुझे अभी तक, मतलब जहां तक मेरा मैंने सुना है वही मैं बोलता हूं।
अच्छा, ऐसा वर्णन नहीं है क्या?
नहीं, कहीं पर सुना नहीं मैंने।
थैंक यू। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस, हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया कि किस तरह हरि नाम में हमें गंभीरता लेनी चाहिए, और हम जो आश्रम में रह रहे हैं तो हमें ये मौका जो है बहुत एक सरलता नहीं लेनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभु जी, आपने जो बताया कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि भक्त हमेशा उदास जैसे रहते हैं, तो क्या यही है षडगोस्वामी अष्टकम में कहा गया है, राधे ब्रज देवी के चललिते? तो भक्त को भी वो अपने संबंध के हिसाब से हमेशा भगवान को याद रखते रखते, वो स्मरण करते करते उसे उदासीन आ जाती है, कि क्या फिर आपने बोला कि आनंदम बुद्धिवर्धनम, वो आनंद ही रहता है, तो वो कैसे विरह भाव में रहता है हमेशा जैसे षड गोस्वामी रहे?
एक्चुअली षड गोस्वामी या वृंदावन की गोपियां कभी भी दुख में या उदासीन नहीं रहे। वो दुखी दिखते थे, बाहरी रूप से वो दुखी लगते थे, लेकिन अंतरंग जो है इतना आनंदित वो रहते थे कि हम उनके आनंद को समझ नहीं पाएंगे। तो वास्तव में भगवान का नाम जप करते करते उस प्रेमा भाव को प्राप्त होते हैं, और वो प्रेम भाव जो है वही उदासीनता है। कोई अगर भजन करना है, बहुत नाच नाच कर भजन कर रहा है और सब दुनिया भूल चुका है, तो वही उदासीनता है उसके लिए। और कोई बहुत गंभीरता से, कोई अगर प्रसाद खा रहा है, प्रसाद खा खा कर वो भगवान को याद कर रहा है, वही उसके लिए उदासीनता है। लेकिन कोई केवल खा रहा है, पेट भरने के लिए खा रहा है, तो फिर उसके लिए वो, लेकिन प्रसाद रूप में खा रहा नहीं है, भगवान का है, पूरे शरीर को लगा रहा है, पनीर भगवान का रूप है, भगवान दिखाई दे रहे, उसमें भी दिखाई दे रहे खा रहा है, तो वो पनीर उसके लिए दो ये नहीं करेगा, क्या कहते हैं, हानिकारक नहीं होगा वो तो, क्योंकि वो पनीर रहता ही नहीं है। मिर्च को भी खाएंगे, कोई बोले मिर्च भगवान खा रहा है, लेकिन वो मिर्च तीखी नहीं लगेगी, मीठी लगेगी। उसमें डिपेंड करता है कि कौन से भाव को धारण करके खा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपने, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।